ओम शांति। समय का इशारा, हम सभी संगम योगी पुरुषार्थियों को बाबा के इशारे के साथ साथ समय के इशारे को भी साथ में रखकर प्रसाद करना अति आवश्यक है, क्योंकि बाबा के इशारे के साथ साथ समय के इशारे को भी ध्यान में रखकर जब हम प्रसाद करते हैं तभी समय पर हम संपूर्णता की मंजिल पर पहुंच पाएंगे। इसलिए समय के इशारे को समझना बहुत जरूरी है। तो कुछ समय के इशारे मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला समय का इशारा, समय का इशारा हमें कह रहा है कि पुरुषार्थ में तीव्रता लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इम्तिहान नजदीक दिखाई दे रहा है। इसलिए इम्तिहान में अच्छे मार्क्स से पास होने के लिए प्रसाद में तीव्रता लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जो ड्रामा में दर्श शूट होगा वही क्लब क्लब शूट होगा। इसलिए हमें 200 नाखून का जोर लगाकर प्रसाद में तीव्रता लानी होगी। प्रसाद में तीव्रता लाना अर्थात पूरी उमंग के साथ अच्छी तरह से चारों सब्जेक्ट्स में प्रसाद करना, इसलिए हम सभी स्पिरिचुअल रेस में दौड़ रहे हैं और इस रेस में हमें केवल दौड़ना नहीं है लेकिन विनर भी बनना है। इसलिए तीव्रता से दौड़ना बहुत जरूरी है। दूसरा समय का इशारा, दूसरा इशारा है स्वयं पर पूरा अटेंशन रखना, क्योंकि हम देखते हैं सेवा के क्षेत्र में हम बहुत दौड़ भाग करते हैं, उसके कारण स्वयं पर अटेंशन थोड़ा सा कम होता है। बाबा ने भी मुरली में कहा है कि अमृत वेला मुरली अच्छी तरह से आप करते हो, बाद में सेवा में जब बिजी होते हैं तो योग को एक तरफ रख देते हैं, किनारे कर देते हैं। तो सेवा के क्षेत्र में रहते हुए योगाभ्यास अच्छी तरह से चलता रहे उसके लिए आवश्यक है स्वयं पर पूरा अटेंशन रखना। दादी जानकी जी के साथ कोई मिलता था और पूछता था कि दादी जी आप क्या पुरुषार्थ करती हैं, तो दादी जी कहती थी मैं स्वयं पर 90% अटेंशन रखकर पुरुषार्थ करती हूं। थोड़े समय के बाद और कोई पूछता है तो कहती थी 95% अटेंशन के साथ मैं पुरुषार्थ कर रही हूं। तो सेवा के खिलौने के साथ खेलते रहना जरूरी है, लेकिन खिलौने के साथ खेलते खेलते हमें संपूर्णता के मंजिल पर पहुंचने पर भी ध्यान रखना है। और स्वयं पर अटेंशन अच्छी तरह से रखने के लिए बाबा हमें इशारा देते हैं कि याद का चार्ट रखते चलो, क्योंकि जब हम चार्ट रखते हैं तो अपने पर, अपनी मन और बुद्धि पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं। मन और बुद्धि को सारे दिन डिसिप्लिन में रखते हैं, बिजी रखते हैं और उनके द्वारा अविनाशी कमाई करते रहते हैं। इसलिए चार्ट के माध्यम से भी हम स्वयं पर अटेंशन बढ़ा सकते हैं। तीसरा इशारा है, वर्तमान समय के अनुसार टचिंग पावर और कैचिंग पावर को बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे समस्याएं बढ़ती जाएगी, विघ्न बढ़ते जाएंगे, तो उस परिस्थिति में बाबा हमें टचिंग और कैचिंग पावर के द्वारा पालना देंगे। लेकिन उसके लिए आवश्यकता है अपने बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखना। बुद्धि क्लीन रखना अर्थात बुद्धि पर व्यर्थ और नेगेटिव का डस्ट न हो, और क्लियर रखना अर्थात बुद्धि हमारी किसी व्यक्ति वैभव के तरफ फंसी हो न हो, फ्री हो। जब हमारी बुद्धि होगी फ्री, उसी समय बाबा हमें टचिंग दे सकते हैं और उस टचिंग को हम अच्छी तरह से कैच कर सकते हैं। एक देश का प्राइम मिनिस्टर दूसरे देश के साथ बात करता है तो हॉटलाइन से बात करता है, वो लाइन हमेशा फ्री रहती है। उसमें किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो ऐसे हमारी बुद्धि अगर फ्री होगी, एंगेज नहीं होगी, तो बाबा हमें टचिंग देंगे, क्योंकि बाप बच्चों का अच्छी तरह से ध्यान रखता है, पालना करता है। जब बहुत समस्याएं बढ़ती जाएगी उस समय बाबा टचिंग के द्वारा हमें डायरेक्शन देंगे, इधर जाओ इधर नहीं जाओ, ये करो ये नहीं करो, और उसमें ही हमारा कल्याण समाया हुआ होगा। तो ऐसी पालना प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है, हमारे पास वॉइसलेस वायरलेस सेट उपलब्ध होना, वॉइसलेस वायरलेस सेट होगा तो जब चाहे हम बाबा से बात कर सकेंगे और जब चाहे बाबा हमारे से बात कर सकेंगे। लेकिन ऐसा वॉइसलेस वायरलेस सेट जिन आत्माओं की पवित्रता बहुत ऊंची है उनको ये सेट प्राप्त होता है, भगवान के साथ फेस टू फेस टॉकिंग करते रहते हैं। चौथा इशारा, वर्तमान समय के अनुसार आवश्यकता है समेटने की शक्ति को बढ़ाना। हम देख रहे हैं परिस्थितियां विकट होती जा रही हैं, बड़े बड़े अर्थक्वेक भी हम आ रहे हैं देख रहे हैं, कोरोना का बहुत बड़ा पेपर हमारे सामने आया और चाइना हमें बॉर्डर पर हमेशा तंग करता रहता है, तो इससे विभिन्न प्रकार की समस्याएं हमारे सामने और बढ़ती जाएगी, तो उन समस्याओं में हमें उलझना नहीं है, उसके लिए समेटने की शक्ति को अपनाकर अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर तपस्या में लीन होने का अभ्यास बढ़ाना होगा, क्योंकि बुद्धि जब इधर उधर भागती है तो एकांतवासी बनकर एकाग्रता का अभ्यास करना थोड़ा मुश्किल लगता है। इसलिए अभी से ही हमें वो आदत डालनी है। योगी हमेशा अंतर्मुक्ता के गुफा में बैठकर तपस्या में लीन रहता है, ऐसे बुद्धि को विस्तार से समेटते जाएं और खुद में और खुदा में खोने का अभ्यास बढ़ाते रहें, तो हमारी स्थिति परिपक्व होती जाएगी। पांचवा इशारा है, लक्ष्य और लक्षण में समानता लाते रहें। हम सभी का लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंचा बनना, राम सीता जैसा कोई बनना नहीं चाहता है, इतना ऊंचा हमारा लक्ष्य है। लेकिन एकांत में बैठकर हमें चेक करना है क्या उनके जैसे लक्षण मेरे जीवन में आ रहे हैं, मैं उन लक्षण को धारण कर रहा हूं। अगर उनके जैसे लक्षण हमारे में नहीं होंगे तो सतयोग में हम बहुत साधारण पद पाएंगे, प्रजा में या नौकर चाकर के घर में जन्म लेंगे। तो लक्ष्य इतना ऊंचा है तो लक्षण भी ऐसे मेरे जीवन में मुझे धारण करते रहना है, इस पर हमें अटेंशन देते रहना है, और उसके लिए आवश्यकता है पुरुषार्थ में तीव्रता सदा बरकरार रखना, अलबेलेपन और आलस्य को सदा के लिए विदाई देना, क्योंकि हमारे पुरुषार्थ में अलबेलापन बाधा डालता है। हम सभी होशियार विद्यार्थी हैं, एक बार तालियां तो बजाओ जरा। हम सभी होशियार विद्यार्थी यहां बैठे हैं, होशियार विद्यार्थी उनको कहते हैं जो होशियार, जो हमेशा होश में रहता है, अटेंशन में रहता है, मेरा टीचर मुझे क्या इशारा दे रहा है और समय मुझे क्या इशारा दे रहा है, वो पूरा चौकन्ना होकर रहता है और उसी अनुसार अपने पुरुषार्थ के कदम उठाता है। और ऐसे होशियार विद्यार्थी ही यूनिवर्सिटी में चमकते हैं। तो इसलिए हमेशा मैं होशियार विद्यार्थी हूं इस स्वमान में रहना है और अलबेलेपन को सदा के लिए समाप्त करना है। बहुत तेजी से आगे बढ़ते ही जाना है। और लक्ष्य और लक्षण में समानता लानी है। छठवां इशारा है, वर्तमान समय के अनुसार रहम दिल और दातापन के संस्कार इमर्ज करना बहुत जरूरी है। हम सभी पूर्वज आत्माएं हैं, कल्प वृक्ष के जो आत्माओं रूपी पत्ते हैं उन सब का ध्यान रखना, उन सब के पालना करना, ये हमारा फर्ज बनता है। और उनकी सेवा करते रहने के लिए हमारे मन में हमेशा रहम दिल और दातापन की भावना पनपती रहे। मुझसे तो आगे बढ़ना ही है, लेकिन ये जो मेरे संबंध में आने वाली आत्माएं हैं उनका भी मुझे भला करते जाना है। भला उल्टा होता है लाभ, उनको भी मुझे लाभ देना है। बाबा से खजाने लेते रहना है और उन आत्माओं को खजाने मुझे बांटते रहना है, उनका भला करते जाना है। लेकिन उसके लिए आवश्यकता है रहम दिल की भावना मन में सदा रहना, दातापन की भावना सदा पनपती रहे। क्योंकि जो राजे महाराजे होते हैं वो दातापन कर अनेक आत्माओं की पालना करते हैं, सहयोग देते हैं, आगे बढ़ाते हैं और बहुत निकट समय में हमें ये गोल्डन चांस मिलने वाला है। अनेक आत्माओं की मनसा के द्वारा सेवा करते रहना और बहुत आत्माओं की दुआएं लेने की भी हमें बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और आठवां इशारा है, ।2017 में बाबा ने लास्ट में कहा अभी समाप्ति वर्ष मनाओ। समाप्ति वर्ष अर्थात अपनी कमियों को समाप्त करना, अपनी त्रुटियों को समाप्त करना और घर जाने की अच्छी तरह से तैयारी में लगना। क्योंकि टीचर ने जो कुछ हमें सिखाना था वो सिखा दिया, तो हमें स्वयं को माला माल करना है। मेरा बाप सागर है तो मुझे भी मास्टर सागर अर्थात खजानों से संपन्न बनकर घर जाना होगा। कोई भी छोटा मोटा दाग मुझ आत्मा रूपी चैतन्य हीरे पर है तो उस दाब को भी मुझे मिटाना होगा। अगर वो दाग रहेगा तो हमें सजाएं भी खानी पड़ेगी और सतयुग में पद भी हमारा कम होगा। इसलिए अपनी जो कमियां हैं उनको हमें हटाना है और बेदाग चमकता हीरा बनना है। लेकिन इन सभी इशारों पर चलने के लिए हमें एक प्रोजेक्ट को अपनाना है। कौन सा प्रोजेक्ट? अमन का प्रोजेक्ट जीवन में अपनाना होगा। अमन, अर्थात पावरफुल अमृत वेला हर रोज करते रहना। म अर्थात मुरली का आनंद लेकर मंथन विचार सागर अच्छी तरह से करना। और न अर्थात नमा शाम के समय को भी शक्तिशाली अनुभव करना। अगर ये अमन का प्रोजेक्ट जीवन में अपनाते हैं तो पुरुषार्थ हमारा तेजी से आगे बढ़ता जाएगा। हर रोज इस प्रोजेक्ट को अपनाते रहना है। और प्रायः देखा जाता है हम योगाभ्यास सभी करते हैं, हर रोज करते हैं, लेकिन फिर भी कारोबार में जब हम आते हैं किसी न किसी प्रकार की फीलिंग आती है, थोड़ा रोब आता है, थोड़ा सा अहम भाव भी जागृत होता है। छोटी मोटी कमियां खामियां अभी भी आत्मा में दिखाई देती हैं। इसका मतलब आत्मा में विकारों के कुछ अंश बाकी अभी भी हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा? विकारों का नाम और निशान मिटाने के लिए शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाना होगा। बाबा ने स्पष्ट इशारा दिया है कि साधारण योगाभ्यास करने का समय समाप्त हो चुका है। अभी जो समय चल रहा है शक्तिशाली योगाभ्यास करने का चल रहा है। शक्तिशाली योगाभ्यास करना अर्थात योगाभ्यास के बाद हमें ऐसा एहसास और अनुभव हो कि मुझ आत्मा ने सर्वशक्तिवान बाप से बहुत शक्तियां प्राप्त कर ली। ऐसी अनुभूति हमें सदा होती रहे। लेकिन हर रोज शक्तिशाली योगाभ्यास हमारा बना रहे उसके लिए योगाभ्यास करते समय कुछ बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहली बात, शक्तिशाली योगाभ्यास करने के लिए जब हम योग में बैठते हैं, बाबा के पास बैठते हैं, परम धाम में या सूक्ष्मोतन में, स्वयं को शक्तिशाली आत्मा अनुभव करना जरूरी है। केवल मैं आत्मा नहीं हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं। इस स्थिति में हमें बैठना है, तभी आत्मा रूपी बल्ब का जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम होगा और बाबा जो स्पिरिचुअल पावर हाउस हैं उनसे हम अथाह शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर सकेंगे। परिणाम स्वरूप ऐसा शक्तिशाली योगाभ्यास अनुभव होता जाएगा। दूसरी बात, हमें बाबा का प्रेम स्वरूप अनुभव करना है, लेकिन प्यार के सागर के साथ साथ बाबा शक्तियों के सागर भी हैं। तो शक्तिशाली स्वरूप बाबा का हमें देखना है और अनुभव करना है। हमने बाबा कह के बाबा को ऑर्डिनरी कर दिया है, वो तो मेरा बाबा है, बाबा तो है, लेकिन कौन सी वो हस्ती है, सर्वोच्च वो सत्ता है, तीनों लोगों में उसके इशारे पर सारी कारोबार चलती है, उसके मुट्ठी में सारा संसार है। ऐसी सर्वोच्च सत्ता को हमें परम धाम में ज्ञान सूर्य शक्तिशाली रूप में देखना है और अनुभव भी करना है, तभी ऐसी शक्तिशाली योग की अनुभूति हमें होगी। और तीसरी बात, शक्तिशाली योग की अनुभूति करने के लिए हमारा मन और बुद्धि खुशी से और नशे से भरपूर सदा रहें। जब हम योग की साधना करते हैं उस समय विशेष मन और बुद्धि ईश्वरीय नशे में झूमती रहें तो परमात्म मिलन का आनंद कुछ और ही आता है। परमात्म मिलन में जो अनुभूतियां हम होती हैं वो कुछ हटकर होती है। कभी भी ऐसा ना समझें कि मैं योग करने के लिए बैठा हूं या बैठी हूं, हमेशा ऐसा समझें दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता के साथ में मुलाकात करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए बैठा हूं। तो इस शक्तिशाली स्वरूप में आप बैठेंगे, मान बुद्धि आपकी भरपूर होगी शक्तियों से, नशे से, तो ऐसी सुंदर अनुभूति आपको योगाभ्यास में होगी। और शक्तिशाली योगाभ्यास के लिए दिल में हमारे परमात्म प्यार का परसेंटेज बढ़ता रहे, इस पर ध्यान देना है। प्रेम की मात्रा, आज भी बाबा ने कहा, याद की यात्रा में प्रेम की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे, क्योंकि जितनी प्रेम की मात्रा बढ़ती जाएगी उतना बाबा के साथ हम कंबाइंड स्वयं को अनुभव करेंगे। तो प्रेम स्वरूप याद, शक्ति स्वरूप याद में स्वतः ही परिवर्तन होगी, क्योंकि बाबा एक तरफ प्यार के सागर हैं तो दूसरी तरफ शक्तियों के सागर भी हैं। तो इसलिए दिन प्रतिदिन हमारे दिल में परमात्म प्यार का झरना बहता रहे, प्यार का परसेंटेज बढ़ते रहने से बाबा को हम अपना संसार अनुभव करते रहेंगे। इस संसार में रहते हुए भी मेरा संसार एक बाबा है, क्योंकि बुद्धि योग सभी तरफ से हटेगा, प्यार जो हमारा इधर उधर बटा हुआ है, वो बिखरा हुआ है, वो हमें बटोरना है और एक बाबा पर फोकस करना है, ट्रांसफर करना है, तभी ऐसी शक्तिशाली योग की अनुभूति हमें होगी। लेकिन उसके साथ एकांतवासी बनकर एकाग्रता के अभ्यास को भी बढ़ाते रहें, क्योंकि हमने देखा मन बुद्धि हमारी इधर उधर बहुत भागती है, बहुत दौड़ती है, और इस मन और बुद्धि पर अच्छी तरह से रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर होगी तभी हम एकाग्रता के साथ एकांतवासी बनकर बाबा को याद करेंगे। बिल्कुल बुद्धि का फोकस ज्ञान सूर्य बाबा पर होगा, तब ही हमें ऐसे शक्तिशाली योगाभ्यास की अनुभूति होगी। मन और बुद्धि हमारे पूर्णतया नियंत्रण में और अनुशासन में हो, उसके लिए इन दोनों बच्चों को, ये आत्मा रूपी मां के दो बच्चे हैं मन और बुद्धि, इन दोनों को हमें बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग देना है, प्यार से समझाना है कि हे बुद्धि अभी इधर उधर नहीं भागो। बहुत भागती रही बुद्धि, उसके कारण बुद्धि हमारी कमजोर हो चुकी है, उसको बाबा पर हम बिठाते हैं, माया उसको हटा देती है क्योंकि वो कमजोर बन चुके हैं। बुद्धि अगर हमारी शक्तिशाली होगी तो लंबे समय तक बाबा पर एकाग्र होकर रहेगी। इसलिए बुद्धि को भी शक्तिशाली बनाते रहें और नियंत्रण पर में भी रखते रहें, और मन को अच्छी तरह से समझाएं, हे मन तुम माया के साथ में रहकर मेला बन गए, अभी जितना समय मिले आपको परमात्मा के संग में ही रहना है, क्योंकि वो पवित्रता के सागर हैं, एवर प्योर हैं, तो उनके संग में रहने से आप भी प्योर बन जाओगे। तीसरा, मन और बुद्धि को अच्छी तरह से हमें प्यार से समझाना है और उनके साथ मित्रता करनी है और उनको जास्ती से जास्ती बाबा की याद में बिजी रखना है और अविनाशी कमाई करते रहना है, क्योंकि ये संगम युग ही अविनाशी कमाई करने की सीजन है। इस सीजन में हमें अथाह खजाने शक्तियों के प्राप्त करने हैं। इस जैसे इम्तिहान नजदीक आती है, विद्यार्थी को कुछ दिखाई नहीं देता है, पढ़ाई 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 वो एक ही धुन में रहता है, पढ़ाई के बिना उसको कुछ भी नजर नहीं आता है। तो ऐसे हमारा भी इम्तिहान नजदीक दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें भी बाबा को याद करने की धुन लगी रहे। दुनिया में कहते हैं धुन है तो धन है, धुन नहीं तो धन नहीं। धुन पूरी लगना अर्थात पूरे लगन के साथ उस प्रसाद में लगे रहना, जुटे रहना, तभी हमें अथाह कमाई करने का गोल्डन चांस मिलता है। तो भाग्य विधाता और मेरा भाग्य, इन दोनों बातों को हमें सामने रखना है। सारे संसार को भाग्य बांटने वाला मेरा बाप बन चुका है, जितना चाहे मैं उनसे खजाने लूट सकता हूं और लुटा सकता हूं, और हमेशा एक बात याद रखना है, मार्जिन रखने वालों को मार पड़ती है। कमाई करने में थोड़ी सी भी अलबेलेपन के कारण मार्जिन हम छोड़ते हैं तो कौन सी मार पड़ती है, हाँ जी, हाँ, पश्चाताप की मार पड़ती है। मौका था, भाग्य बांटने वाला मेरा बाप था, जितना चाहे मैं लूट सकता था, लेकिन आलस्य और बेले कारक के कारण वो उस मौके का मैंने पूरा लाभ नहीं लिया। इस पश्चाताप में हम सदा रहते हैं, क्योंकि बाबा ने स्पष्ट कहा है कि मेरे ही सामने मेरे बच्चों की दो लाइनें होगी अंत में, एक लाइन होगी प्राप्ति स्वरूप आत्माओं की और दूसरी लाइन होगी पश्चाताप स्वरूप आत्माओं की। प्राप्ति स्वरूप आत्माएं जो हैं वो खुशी में झूमते रहेंगे, भगवान मेरा बाप था, उनसे मैंने बहुत खजाने लूटे हैं, मेरी झोली भरपूर है, वो खुशी में झूमते रहेंगे। लेकिन पश्चाताप स्वरूप वाली आत्माएं पश्चाताप करेंगे, मौका था, भगवान मेरा बाप था, लूट सकता था, लेकिन मैंने ये चांस का पूरा फायदा नहीं लिया। तो बाप कभी भी बच्चे को रोता बिलखता नहीं देख सकता है, इसलिए बाबा उस दर्श को बहुत जल्दी परिवर्तन करेंगे। लेकिन हमें याद रखना है कि प्राप्ति स्वरूप आत्माओं के लाइन में ही मुझे रहना है, और इस रेस में सदा आगे बढ़ना है। समय के इशारे के साथ अगर चलते रहना है तो हमेशा एक सीन हमारे सामने रखना है। कौन सा सीन? स्पिरिचुअल रेस का सीन सामने रखो। ये आध्यात्मिक दौड़ है, इस आध्यात्मिक दौड़ में अभी 15 लाख 20 लाख आत्माएं दौड़ रही हैं, भगवान की मेहरबानी मेरे पर हुई है, मुझे इस दौड़ में सम्मिलित होने का चांस मिला है, इसलिए इतने सारे आत्माओं रूपी घोड़े दौड़ रहे हैं, तो मुझे इस दौड़ में आगे दौड़ना है, पीछे नहीं रहना है। जब मैराथन की दौड़ होती है तो आगे जो दौड़ते हैं उनको देखकर सभी खुश होते हैं, और जो पीछे दौड़ते हैं उनको देखकर दया आती है, बिचारा थका हारा धीरे धीरे चल रहा है। तो हमारी ये जो रेस है, आध्यात्मिक दौड़ है, बाबा अच्छी तरह से वतन में हमेशा देखते रहते हैं, तो इस दौड़ में बाबा मुझे आगे दौड़ता हुआ देखें, न कि पीछे हाँपता हुआ दौड़ता हुआ देखें। तो ये रेस का सीन सामने रखने से बहुत अच्छी तरह से हम आगे ही आगे दौड़ते जाएंगे। और बाबा ने कहा है समय को टीचर नहीं बनाना है, समय का चाबुक लगता है या समय का ठोकर लगती है तब हम थोड़े से आंखें खोलते हैं, पुरुषार्थ को तेज करते हैं, नहीं, बाबा को हमें टीचर अनुभव करना है। बाबा को टीचर अनुभव करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, और समय को अगर टीचर बनाएंगे तो हमारे मार्क्स कम होंगे। इसलिए जो होशियार विद्यार्थी होते हैं वो समय क्या इशारों पर ध्यान जरूर देते हैं, लेकिन बाबा के इशारे के अनुसार अपने पुरुषार्थ के कदम उठाते रहते हैं। इसलिए हमें बाबा ने जो इशारा दिया है उस पर चलना है। आपको याद होगा 17 के पहले 2-3 वर्ष पहले अगर आप अव्यक्त मुरलिया देखेंगे तो बाबा ने बार बार इशारा दिया है, अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है, समय पर भरोसा नहीं रखो। ये बाबा बार बार हमें चेतावनी देते रहे, इसलिए हमें बाबा का सुनना है और समय के पहले अपनी संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना है। ओम शांति।